20 मई दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फतेह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को किया बर्खास्त।
मुख्यमंत्री जो फैसला लिया बहुत सही फैसला लिया है।
1,70,00,000 गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, उसमें शिक्षा में सुधार कैसे हो, इस पे जल्दबाजी नहीं है।
सबको 23 मई का इंतजार, लेकिन विपक्ष के एकजुट होने के भी किए जा रहे हैं प्रयास।
ममता पर यदि कांग्रेस पार्टी अपना दांव खेलती है तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती इसके लिए स्वीकार करेगी, क्योंकि महागठबंधन के तौर पर यदि कोई एक यूनिट उभर करके आता है तो वो उत्तर प्रदेश से ही आता है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से राजभर को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। राजभर योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग जन कल्याण मंत्री हैं। पिछले काफी समय से राजभर न सिर्फ बीजेपी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। अब चुनाव समाप्त होते ही योगी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। कॉमेडियन से राजनेता बने वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राजधानी कीव में दिए अपने पहले भाषण में उन्होंने संसद को भंग करने और समय से पहले जुलाई में ही चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वो ऐसा करवा पाएंगे या नहीं। बीते सप्ताह ही यूक्रेन का सत्ताधारी गठबंधन टूटा था। संविधान के तहत राष्ट्रपति को पार्टियों के नेताओं को नया गठबंधन बनाने के लिए 30 दिन का समय देना अनिवार्य है और इस दौरान वो संसद भंग नहीं कर सकते हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि नई संसद उनके साथ मिलकर काम करे। अपने पहले भाषण में जेलेंस्की ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। मैं मुश्किल फैसले लेने से नहीं डरूंगा। मैं शांति हासिल करने के लिए अपनी लोकप्रियता, अपनी रेटिंग और यहां तक कि अपना पद तक गंवाने के लिए तैयार हूं। और मैं कभी भी अपनी जमीन नहीं गंवाने दूंगा। गूगल ने चीनी टेलीकॉम कंपनी ह्वावे के साथ अपने संबंध समाप्त करने का ऐलान किया है। अब ह्वावे को स्मार्टफोन में चलने वाले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गूगल का सहयोग नहीं मिल सकेगा। इसे चीनी कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि चीन की सरकार का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। ह्वावे का कहना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे फोन और टैबलेट के लिए वो सुरक्षा अपडेट्स उपलब्ध करवाती रहेगी। चीन भी हालात पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, चीन इसके आगे पुष्टि करेगा, जांच करेगा और इस दिशा में हो रहे घटनाक्रमों पर ध्यान देगा। और चीन चीनी कंपनियों के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी हथियारों का इस्तेमाल करने का समर्थन करता है। बांग्लादेश की सरकार ने अगले 65 दिनों के लिए सभी तरह से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से मछुआरों में गुस्सा है और वे प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले बड़े ट्रॉलरों से मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाती रही थी, लेकिन इस बार प्रतिबंध के दायरे में सभी तरह से मछली पकड़ने को शामिल किया गया है, जिसमें छोटी नावें और स्थानीय मछुआरे भी शामिल हैं। तटीय इलाकों और द्वीपों पर रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है और इस प्रतिबंध का उन पर सीधा असर होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा पर सुनवाई हो रही है। अदालत तय करेगी कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को रद्द किया जाए या मुकदमा चलाया जाए। जुमा पर 90 के दशक में हुए एक बड़े रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के आरोप हैं। जुमा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। भ्रष्टाचार के अलावा उन पर धोखाधड़ी, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। जुमा और फ्रांसीसी कंपनी थेल्स की ओर से पेश बचाव पक्ष की दलील है कि मुकदमा शुरू करने में देरी की वजह से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले और एग्जिट पोल के बाद देश की राजनीति में हलचल मचना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल राम नाईक से उनके मंत्रिमंडल में शामिल ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी है। इतना ही नहीं, ओपी राजभर के जिन नेताओं को राज्य में मंत्री पद का दर्जा दिया गया था, उन्हें योगी आदित्यनाथ ने वापस लेने की सिफारिश की है। ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ उनके बेटे अरविंद राजभर की भी निगम के अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अन्य सदस्य जो विभिन्न निगमों और परिषदों में अध्यक्ष व सदस्य हैं, सभी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। इस फैसले का खुद ओम प्रकाश राजभर ने स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री जो फैसला लिया बहुत सही फैसला लिया है। जो फैसला इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कमेटी बनाई, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी की रिपोर्ट आ गई और कमेटी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रख दिए, उसको सिफारिश करने की लागू करने के लिए समय नहीं है। 1,70,00,000 गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, उसमें शिक्षा में सुधार कैसे हो, इस पे जल्दबाजी नहीं है।
ओम प्रकाश राजभर, थोड़ी देर पहले मैंने लखनऊ फोन कर समीर अहमद मिश्र से बात की और पूछा कि योगी के इस कदम के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं।
देखिए रेहान जी, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर का जो है जिस तरीके से ये मुखर रहे हैं शुरू से ही, और लगभग 1 साल से ही ये सरकार बनने के बाद, कुछ दिन तक तो ठीक रहा लेकिन उसके बाद से ये लगातार सरकार के खिलाफ और मुख्य रूप से ये राज्य सरकार के खिलाफ और उस पर भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं। खुले मंचों पर राज्य सरकार की आलोचना करना, कई बार इस्तीफे की धमकी दे देना, कई बार इस्तीफा अपना भेज भी देना, इस तरह की तमाम चीजें जो इनकी ओर से की जा रही थी। और लोकसभा चुनाव के पहले तो ये स्थिति बिल्कुल एक तरफ कहा जाए तो बीजेपी के लिए सिर से ऊपर चली गई कि इन्होंने अपनी पार्टी के कई सीटों पर प्रत्याशी भी खड़े कर दिए, यहाँ तक कि वाराणसी में भी प्रत्याशी खड़े कर दिए। तो ये तो मानना ही जाता था कि इस तरह की स्थिति आएगी, पहले भी आ सकती थी लेकिन पहले किसी तरह का कोई ऐसा संदेश न जाए मतदाताओं के बीच में, जिस राजभर समुदाय से ओम प्रकाश राजभर आते हैं उस समुदाय के बीच कुछ ऐसा न जाए, इसको संभालने की कोशिश की गई, लेकिन ये तय था कि चुनाव के बाद ये स्थिति आनी ही आनी।
ये बताइए, राजभर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कुछ उन्होंने कहा है इस पर?
राजभर की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है कि उन्होंने, उनका ये कहना है कि हम तो सरकार के खिलाफ, जो ये सरकार, उनका ये आरोप है कि सरकार पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है और जो दलितों के खिलाफ काम कर रही है, यही सारी चीजें जो आरोप वो पहले लगाते रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हम तो सरकार से पहले ही इस्तीफा दे रहे थे और दे भी चुके थे, सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया था, इस्तीफा देने के बाद वो मुझे बर्खास्त कर रहे हैं क्योंकि मैं तो खुद सरकार से बाहर हो चुका हूँ और होने के लिए कह रहा था। हालांकि उन्होंने कभी भी इस्तीफा अपना राज्यपाल को नहीं किया था, ये एक बात है। तो ये उनकी प्रतिक्रिया है और वो सरकार पर अब और ज्यादा तरीके से मुखर हो रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं।
राजनीतिक हलकों में इस पर कुछ टिप्पणी हुई है इस कदम पर?
जी, राजनीतिक हलकों में तो इसका जो मुख्य रूप से ये है, ये कहा जा रहा है कि अभी चुनाव परिणाम भले ही नहीं आए हैं लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के रुझान आए हैं उनसे सरकार आत्मविश्वास में है, खासतौर पर योगी सरकार आत्मविश्वास में है। उसी आत्मविश्वास का नतीजा है कि नतीजे का इंतजार भी नहीं किया गया और ओम प्रकाश राजभर को सीधे बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी गई और उनकी सिफारिश तुरंत मान ली गई। और आगे क्या होगा, क्या राजभर सुधर जाएंगे, क्या उनका कदम होगा सरकार के ऊपर, तो कोई बहुत असर पड़ना नहीं है। आज विधायक ओम प्रकाश राजभर के पास है, सात विधायक सरकार पूर्ण बहुमत में, वैसे तो बहुत ज्यादा इसका राजनीतिक तौर पे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया इसी तरह की है। हालांकि एक जो सरकार के खिलाफ या विपक्षी दल है या जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं वो इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि पिछली याद के एक मिनिस्टर को, विधायक को और उसके नेता को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, तो एक ये भी एंगल, राजनीतिक एंगल उसमें दिखा जा रहा है।
ये थे लखनऊ से समीर अहमद मिश्र। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में फैले उत्साह के साथ साथ विपक्षी दलों के एकजुट होने से जुड़ी खबरें भी सामने आने लगी हैं, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां 23 मई को आने वाले अंतिम नतीजों को कितना प्रभावित कर पाएंगी, सुनिए बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की रिपोर्ट।
बीती शाम जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों के साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली में कांग्रेस और लखनऊ में समाजवादी पार्टी समेत बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने की खबरें आना शुरू हो गईं। लेकिन विपक्षी पार्टियां 17वीं लोकसभा का अंतिम स्वरूप तय करने में आखिर कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएंगी, वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता इसे एक बिखरे हुए विपक्ष के एकजुट होने की कोशिश के तौर पर देखती हैं।
अब जब नतीजे 23 को निकलेंगे तब तक उनका यही सोच है कि यदि नंबर्स उनके फेवर में आ जाए तो फिर उनको तब उसके बाद वो ढूंढने लगे कि कौन किसके साथ है, कौन नेता बन सकता है, कौन का क्या किस पार्टी का क्या प्रेफरेंस है। उससे अच्छा है कि उसके पहले 3-4 दिन पहले से ही ये काम शुरू हो जाए ताकि जब नतीजे निकलेंगे यदि कुछ पॉसिबिलिटी हो कि विपक्ष का सरकार बन सके तो वो फिर तैयार रहेंगे।
चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी तीसरे मोर्चे के तौर पर एक नए फेडरल फ्रंट बनाने की तैयारी में हैं। वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी तेलुगु राज्यों के इन दोनों मुख्य नेताओं के बारे में और जानकारी दे रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक तरह से वही भूमिका निभा रहे हैं जो 1996 में CPM के नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने निभाया था। दिवंगत सुरजीत के कोशिशों से HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनी थी जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया था। नायडू को भी 2019 का चुनाव 1996 जैसे लग रहा है और उनको चुनौती दे रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो अपने फेडरल फ्रंट की अभियान कर रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी कहते हैं कि बसपा सपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक असुरक्षा की वजह से उनका एक साथ आना मुश्किल है।
मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस चाहेगी कि वो मायावती को आगे बढ़ाए। जैसे ही आगे बढ़ती है कांग्रेस का दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी। इसलिए वो अपना दाव जो है वो ममता पर खेलेंगी और ममता पर यदि कांग्रेस पार्टी अपना दाव खेलती है तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती इसके लिए स्वीकार करेगी, क्योंकि महागठबंधन के तौर पर यदि कोई एक यूनिट उभर करके आता है तो वो उत्तर प्रदेश से ही आता है। और अंदरूनी बात तो ये है कि समाजवादी भी पार्टी नहीं चाहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि यदि मायावती का राजनीतिक उभार होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो एक समय आएगा जब समाजवादी पार्टी हाशिए पर चले जाएगी, तब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी उसके दो ध्रुव हो जाएंगे, एक तरफ बसपा होगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। तो समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति भी वहां बन सके।
लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में बनी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार का हवाला दे रही स्मिता बता रही हैं कि एकजुट विपक्ष का सरकार बनाना असंभव भी नहीं।
ये नंबर्स पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता ही है कि सबसे बड़ा पार्टी कौन है। जो सबसे बड़ा पार्टी है उसका ही नेता प्रधानमंत्री का चेहरा बनके आगे आता है। मगर साथ साथ हमने एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब कर्नाटक के चुनाव हुए थे तभी भी ये हुआ था कि नतीजे निकलने के पहले ही एक दिन पहले गुलाम नबी आजाद जी और अहमद पटेल जो दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पहुंच गए थे बैंगलोर एक दिन पहले और उन्होंने जनता दल एस की लीडरशिप के साथ बातचीत करके वो तैयार थे। तो जबकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली मगर ये लोग तब तैयार थे और उन्होंने ये कहा JDS को कि इन इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मिंग अ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हम एक साथ आ जाएंगे।
अब सरकार किसकी बनेगी और विपक्ष कितना मजबूत होकर उभर पाएगा ये तो 23 मई को ही साफ हो पाएगा। प्रियंका दुबे, BBC दिल्ली।
2019 का सबसे अहम दिन 23 मई,
इस दिन तय होगी अगली सरकार,
देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री,
मोदी लौटेंगे या फिर कोई और आएगा,
NDA की ज्यादा सीटें आएंगी या UPA की,
उत्तर प्रदेश में महागठबंधन कितनी सीट जीतेगा,
बंगाल से क्या जनादेश निकलेगा,
इन सभी सवालों के जवाब चुनावी नतीजे और सटीक विश्लेषण BBC हिंदी रेडियो पर
शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम दिन भर प्रस्तुत करेंगे
रूपा झा,
रेहान फजल,
राजेश जोशी
और सुशीला सिंह।
BBC हिंदी रेडियो फेसबुक और यूट्यूब पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। जैसे ही आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार थमा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की और एक गुफा में ध्यान लगाया। जिस समय मोदी ये सब कर रहे थे, उनकी तस्वीरें और वीडियो टीवी चैनलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी। विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आखिरी चरण के तहत प्रचार थम जाने के बाद अप्रत्यक्ष ढंग से किया गया चुनाव प्रचार था। नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा का हासिल क्या था? क्या ये एक तरह से चुनाव प्रचार था? बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़ ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को विपक्षी दल अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग भी की थी। हालांकि मोदी का कहना था कि वो चुनाव आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद ही केदारनाथ गए थे, लेकिन उनके केदारनाथ जाने पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि आखिरी चरण के तहत 59 सीटों पर वोटिंग होनी थी और प्रचार थम चुका था। तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया? वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामसेशन कहती हैं कि यहाँ मामला नैतिकता का है।
उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में ही खत्म हो गया, लेकिन बाजू में हिमाचल, जिसको देवभूमि कहते हैं, वहाँ कल वोटिंग हुआ। और हिमाचली क्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे ये धर्म की बहुत अहमियत है, वो भी बनारस में हो रहा था, तो जो वो मेडिटेशन कर रहे थे, उस सबका जरूर कुछ न कुछ असर तो हुआ ही होगा वोटर्स पे। टेक्निकली या लीगली देखा जाए तो उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं, लेकिन ये जो है पूरा एथिक्स का सवाल जरूर उठाता है।
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को अलग नजरिए से देखते हैं।
केदारनाथ में उनकी आस्था है, प्रधानमंत्री रहते हुए चौथी बार गए, तो एक तो ये निजी पक्ष है। दूसरा, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो भी इस तरह के काम करते हैं उसका लक्ष्य तात्कालिक बहुत कम होता है और दीर्घ अवधि की दृष्टि से ज्यादा होता है। ये 2024 की दृष्टि से मुझे नजर आता है कि ये जो इमेज बना, ये इमेज लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहेगी, और उसके बाद जब इन विषयों पर वो बोलेंगे, भारतीय संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर और भारतीयता पर, धार्मिक स्थानों के बारे में, तो लोगों के दिमाग में वो इमेज आएगी।
वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश विपक्ष के सवालों को वाजिब तो मानते हैं, मगर ये भी कहते हैं कि मोदी को संविधान के हिसाब से उपासना का अधिकार है। लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मोदी ने केदारनाथ में जो कुछ किया उसके पल पल के अपडेट मीडिया के माध्यम से वोटरों तक पहुंचे।
अगर प्रधानमंत्री बिल्कुल अकेले गए होते या उनके स्टाफ के लोग होते, दूसरे इलाकों को वो दर्शनीय न होता, तो शायद ये सवाल बिल्कुल न उठता। मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को, भारत के सभी राजनीतिक दलों को जरूर पहल करनी चाहिए कि क्या किया जाए कि जब इलेक्शन हो रहे हों तो टेलीविजन चैनलों के जरिए या प्रसारण माध्यमों के जरिए जो टेलीकास्ट है उसको कैसे रेगुलेट कैसे किया जाए।
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद मोदी ही हैं जो इस तरह से हिंदू धर्म और संस्कृति से सार्वजनिक तौर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
इंदिरा गांधी ये करती थी और उसका खूब मीडिया में भी प्रचार होता था, मीडिया में भी खबरें आती थी। फर्क यह है कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। सार्वजनिक रूप से दिखाने की कोशिश, पेश करने की कोशिश, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के बाद कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी, और वो ज्यादा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। दूसरा, उनको एडवांटेज ये है कि उनकी पार्टी की जो विचारधारा है उससे वो मेल खाता है।
बहरहाल वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामसेशन का मानना है कि इस मामले में मीडिया अपना काम कर रहा है और जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की। ये देखना चुनाव आयोग का काम है कि किसी गतिविधि से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर एग्जिट पोल आने के बाद राजनीति तेज हो गई है। एनडीए को मिल रही बढ़त की संभावनाओं के चलते नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मांग की है कि राज्यपाल को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है और इसका फैसला विधानसभा में किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र लिखकर राज्यपाल से मांग की है कि कुछ विशेष मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा के लिए भी विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। भोपाल से सूर्य न्यासी की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने की संभावनाओं के बीच मध्य प्रदेश में राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। भाजपा को लग रहा है कि यह उसके लिए अच्छा मौका है जब लोगों ने देश भर में भाजपा में अपनी आस्था जताई है। भाजपा को महसूस हो रहा है कि वह मौके का फायदा उठाकर प्रदेश में कमलनाथ सरकार को कमजोर कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा,
मैं आज राज्यपाल महोदया को पत्र लिख रहा हूँ कि विधानसभा का तत्काल वह सत्र बुलाएं, एक सप्ताह या 10 दिन जितने की अवधि हो, क्योंकि ये सरकार सत्र टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सत्र यदि शुरू होगा तो सरकार की शक्ति परीक्षा हो जाएगी, सरकार के संख्या बल की परीक्षा हो जाएगी, और मुझे जहाँ तक विश्वास है लंबे समय तक ये सरकार चलने वाली नहीं है, अल्पकालिक सरकार है, कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में राज्यपाल को लिखा है कि विधानसभा का गठन हुए और नई सरकार के प्रभाव में आए लगभग 6 माह व्यतीत हो चुके हैं, इस दौरान प्रदेश में अनेक ज्वलंत और तात्कालिक महत्व की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसलिए अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों सहित अन्य विषयों पर चर्चा कराए जाने हेतु अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर शीघ्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देशित करने का कष्ट करें। वहीं कांग्रेस के मंत्री गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया है।
जी ने पहले भी विधानसभा के सत्र में ये बात कहते रहे कि बहुमत नहीं है, उनकी पूरी पार्टी कहती रही, और जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जब बहुमत सिद्ध करने का अवसर था उनको अपना बीजेपी का अगर था तो फिर मैदान छोड़ के भागे क्यों, उस समय मतदान करा लेते, हमने तो चुनौती दी थी मतदान खुले आम मतदान कराइए, आप भी करिए, हमने वोटिंग की वो भी करते, अगर बहुमत था तो सिद्ध हो जाता, पता चल जाता सर किसके साथ बहुमत है, पर हमने तो बहुमत सिद्ध कर दिया, 121 लोगों का 120 लोगों के वोट डलवा के प्रमाणित कर दिया था कि बहुमत हमारे साथ है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस सरकार की स्थिति प्रदेश में कमजोर है और एग्जिट पोल ने भाजपा को नई जान दे दी है। शिव अनुराग पटेरिया कहते हैं,
चुनाव के ठीक पहले कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद या उसके पहले हम जब चाहें एक फूंक मार के सरकार गिरा सकते हैं, दरअसल एक संकेत देने की कोशिश की गई है, जो अनिर्णय की स्थिति में गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी विधायक हैं कि हुजूर हम फ्लोर पे आना चाहते हैं, इसीलिए जानकारी आज एक और खबर आ रही है कि नतीजों के तत्काल बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है और उसमें बसपा के दोनों सपा के एक और जो निर्दलीय विधायक उनको शामिल किया जा सकता है। आखिर सरकार बड़ी चीज है और सरकार बचाना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए।
मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास 114 सीटें हैं और भाजपा के पास 109। बहुमत के लिए 116 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस को बसपा के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इनकी नाराजगी की खबरें लगातार आती रहती हैं। ये लोग सरकार में भी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। सरकार में जगह नहीं मिलने की वजह से यह नाखुश रहते हैं और बदलते समीकरण में इनकी नाराजगी को भाजपा भुनाना चाहती है। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ हैं सूर्यांशी पांडे।
नमस्कार, मेरा भी स्वीकार कीजिए।
सूर्यांशी का भी नमस्कार, और सूर्यांशी के पास बहुत सारी ईमेल्स हैं, चिट्ठियां हैं।
हाँ।
क्या आपके पास पहला जो हमारे श्रोता का खत है, चिट्ठी है या ईमेल है?
हाँ।
वो क्या है?
ये बहुत रोचक ईमेल भेजा है मोहम्मद अमरुद्दीन ने, जिन्होंने लिखा है, कुवैत से लिखा है, और लिखते हैं कि 18 मई का इंडिया बोल प्रोग्राम जब शुरू हुआ और उसके बाद टेलीफोन लाइन की तकनीकी खराबी हुई, लेकिन उसी बीच जब राजेश जोशी जी की एंट्री हुई तो बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक उस प्रोग्राम को बना दिया, तो भला हो टेलीफोन लाइन की तकनीकी खराबी का जिसने सुनहरा मौका दिया।
हाँ, वो तो बड़े इत्तेफाक की बात है, मैं मोबाइल पर उपलब्ध भी था और कुछ ऐसी मशीनी खराबी हुई थी कि मुझे ऑफिस से फोन आया कि आपको कार्यक्रम में शामिल होना था, पहले से तय नहीं था।
हाँ।
बहरहाल वो कार्यक्रम हुआ और काफी लोगों ने उसे पसंद किया। आप इतने गौर से सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़े तो गणेश प्रसाद हुजदार ने एक शिकायत की है, और उन्होंने कहा है कि ये इस बार उनकी आखिरी उम्मीद है।
इनकी शिकायत का मुझे अंदाजा है। गणेश भाई, आप नेपाल से लिखते हैं, ये कभी नहीं बताते कि नेपाल में किस जगह के आप हैं, और आपकी शिकायत रहती है हम आपके ईमेल को कभी इस्तेमाल नहीं करते। भाई गणेश जी, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि जब आपके ईमेल में कुछ होता है कार्यक्रमों के बारे में तो उसको हम शामिल करते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारी चिट्ठी आप शामिल ही नहीं करते, तो इसको बार बार करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी।
हाँ।
इसलिए आप लिखिए, कार्यक्रमों के बारे में लिखिए, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, और आप कहाँ रहते हैं, अपने गांव का, शहर का नाम भी तो लिखिए।
बिल्कुल। और ये आगे लिखते हैं कि इन्हें रेहान फजल साहब की विवेचना 1983 के जो क्रिकेट वर्ल्ड कप पर है वो बहुत
पसंद आई, उस पर और भी बहुत सारी ईमेल्स आई हैं।
वही एक उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मदनलाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से लिखते हैं कि उन्हें भी रेहान फजल प्रपोजल की ये विवेचना बहुत पसंद आई थी, और साथ ही साथ सलमान रावी की मंदसौर प्याज रिपोर्ट बहुत पसंद
प्याज पर जो मंदसौर से रिपोर्ट की थी सलमान भाई ने, और 1983 वर्ल्ड कप में जब कपिल देव जीत करके आए थे, तो रेहान साहब की तो वो खासियत है कि वो ऐसा समा बांधते हैं लगता है कि हम वहीं मौजूद हैं।
एक जो खत है ये उत्तर प्रदेश से भेजा है, ईमेल भेजा है आजमगढ़, एलिना जैन ने भेजा है, और उन्होंने कहा है कि उनकी उम्र 18 साल है और मैंने 6 महीने बाद बीबीसी का कार्यक्रम सुना क्योंकि पढ़ाई की वजह से वो नहीं सुन पाती थी। और वो कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीबीसी कभी कभी किसी एक समुदाय को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके मुताबिक बीबीसी सच्चाई दिखाता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। जैन क्या नाम बताया इनका पूरा?
एलिना जैन।
एलिना जैन 18 साल की हैं और आजमगढ़ में रहती हैं, बीबीसी रेडियो के कार्यक्रम सुनती हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एलिना, हम बार बार गुजारिश करते हैं अपने सामईन से, अपने सुनने वालों से कि हमें लिखिए, और ख़ास तौर पे अगर आप महिला हैं, लड़की हैं और हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, तो आपकी शिरकत इन कार्यक्रमों में होनी चाहिए बजरिए ख़त के या चिट्ठियां लिख करके। आप अपनी खुद को शरीक कीजिए, खुद को बीबीसी का हिस्सा मानिए। ये आपके जरिए मैं दूसरी जो हमारी महिला श्रोता हैं उनसे भी अपील करता हूँ।
अगला ईमेल लिखते हैं रफीक इब्राहिम, जो रत्नागिरी महाराष्ट्र से लिखते हैं, और वो ये लिखते हैं कि नमस्कार, भारत में बीबीसी हिंदी के खजाने से ओमकार नाथ श्रीवास्तव द्वारा कवि सुमित्रा नंद पंत से एक पुरानी बातचीत सुनकर मुझे मेरा 1973 का कॉलेज का जमाना याद आ गया।
क्या बात है, कितनी पुरानी याद इनको आ गई। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के बहुत बड़े छायावादी कवि थे और ओमकार नाथ श्रीवास्तव ने उनसे बहुत पहले बात की होगी, जो हमारे खजाने में अब भी है। तो इनको बहुत पसंद आई बातचीत, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन शायद इन्होंने शिकायत भी की।
हाँ, उन्होंने कहा है कि ये केवल एक ही अंश क्यों सुनाया उन्होंने।
देखिए, आज सुबह कार्यक्रम में बहुत कम जगह थी और बहुत सारी, अब चुनाव का दौर है तो हमको ये समय बांट के चलना पड़ता है, किस खबर को कितना समय दिया जाए, किस बातचीत को कितना समय दिया जाए, तो कुछ मजबूरियां तो रहती हैं।
बिल्कुल। और आगे बढ़े तो ये जंग बहादुर सिंह जो हैं वो गोल पहाड़ी जमशेदपुर से लिखते हैं, इन्होंने भी वही कहा है कि ओमकार नाथ श्रीवास्तव की सुमित्रा नंदन पंत से की गई बातचीत उन्हें बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि क्या ये सत्य है कि 23 मई गुरुवार को शाम की सभा पूरे 2 घंटे की होगी, और अगर ऐसा है तो मेरी बधाई, आप अभी से स्वीकार।
जी, 23 मई बहुत बड़ा दिन है भारतीय लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए। भारत की जनता जो फैसला करेगी वो नतीजा आएगा, सरकार बनेगी उसके बाद। इसलिए हमने ये तय किया है कि 7:30 से 9:30 तक 2 घंटे का कार्यक्रम बीबीसी हिंदी रेडियो पर हो, उसमें से 1 घंटे का कार्यक्रम यानी 7:30 से 8:30 तक आप कुछ फ्रीक्वेंसीज पे सुन सकते हैं जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देगा, लेकिन ये पूरे 2 घंटे का कार्यक्रम आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर बिल्कुल बिना किसी बाधा के सुन सकते हैं आप।
और आगे बढ़े तो महेंद्र सहारन लिखते हैं, ये ढाबा झलार श्री गंगानगर राजस्थान से लिखते
हैं। क्या लिखते हैं?
और ये लिखते हैं कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान बीबीसी की रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ रही, विशेष रूप से लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र और राजस्थान से की गई रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको हमारे संवाददाताओं की रिपोर्टिंग पसंद आई। हमारी कोशिश यही रहती है कि उसमें बैलेंस हो और तथ्य जो हैं वो बिल्कुल जैसे हैं वैसे आपके सामने पहुंचे। हम अब चलते हैं, अपना पता बताते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। कॉमेडियन से राजनेता बने वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। गूगल ने चीनी टेलीकॉम कंपनी ह्वावे के साथ अपने संबंध समाप्त करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश की सरकार ने अगले 65 दिनों के लिए सभी तरह से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा पर सुनवाई हो रही है। अदालत तय करेगी कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को रद्द किया जाए या मुकदमा चलाया जाए। तजिकिस्तान के न्याय मंत्रालय के मुताबिक जेल में हुए दंगा इस्लामिक स्टेट के सजा याफ्ता चरमपंथियों ने शुरू किया था। इटली के गृहमंत्री मैथ्यू साल्विनी ने कहा है कि वो हर उस व्यक्ति पर मानव तस्करी का मुकदमा चलाएंगे जो अवैध अप्रवासियों को अवैध जहाज पर बिठाएगा। स्वीडन के अधिकारियों ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को हिरासत में लेने की औपचारिक अर्जी दे दी है। असांज पर स्वीडन में बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। यदि वारंट की अनुमति मिल गई तो ये असांज के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की दिशा में पहला कदम होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।